ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज पढ़ेंगे हम लोग भागवत महापुराण सातवां अध्याय, सातवां स्कंद अध्याय छह और श्लोक संख्या सात। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे कृणतो याति विंशतिः जरया ग्रस्तदेहस्य याति अकल्पस्य विंशति। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे कृणतो याति विंशति जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशति। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे कृणतो याति विंशति जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशति। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे कृणतो याति विंशति जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशति। माता जी मुग्धस्य मोहग्रस्त या पूर्ण ज्ञान में न होने वाले व्यक्ति का वाले बचपन में कैसोरे किशोरावस्था में कृणतः खेलते हुए याति बिताता है विंशति 20 वर्ष जरया वृद्धावस्था से ग्रस्त देहस्य ग्रस्य मनुष्य का याति बीत जाता है अकल्पस्य बिना संकल्प के क्योंकि भौतिक कार्यों के करने में असमर्थ रहता है विंशति बचा खुचा 20 वर्ष मनुष्य अपने बाल काल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोह ग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है इसी प्रकार किशोरावस्था में वह अगले 10 वर्ष खेलकूद में लगकर बिता देता है। इस प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तात्पर्य कृष्ण भावना मृत के बिना मनुष्य 20 वर्ष बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में तथा अन्य 20 वर्ष ऐसी वृद्धावस्था में बिताता है जब वह कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता और इस चिंता से घिरा रहता है कि वह अपने लड़कों तथा नातियों के लिए क्या करे और अपनी संपत्ति की किस तरह रक्षा करे। इनमें से आधे वर्ष नींद में निकल जाते हैं। यही नहीं शेष जीवन में वह रात्रि में नींद में अन्य 30 वर्ष गुजार देता है। इस प्रकार जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तथा इस मानव स्वरूप का सदुपयोग करना नहीं जानता वह 100 वर्षों में 70 वर्ष ऐसे ही गंवा डालता है। ओम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूसु पुरुषम् भोक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलम् कृषिष्टम् भगवन् वचांसि मे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणवामि हरि प्रिय भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज इन श्लोकों में, आठ श्लोकों में, पूरे अध्याय में ही जीवन के सत्यता पर शिक्षा दिए हैं। हालांकि ये शिक्षा दे रहे हैं, ये प्रवचन कर रहे हैं अपने सहपाठियों के मध्य में, लेकिन यह उन सहपाठियों पर ही नहीं, सब पर लागू होता है। प्रहलाद महाराज के पास ऑप्शन था, जब गुरुजी सब्जी और आटा सीधा खरीदने चले गए थे घर के कार्य के लिए, तो प्रहलाद महाराज के पास ऑप्शन था कि अपने सहपाठियों के साथ में या तो वे खेल कूद क्रिकेट खेलने जाए, फुटबॉल खेलने जाए, या उन सहपाठियों को कृष्ण में लगाएं। प्रहलाद महाराज कृष्ण के भक्त हैं, जन्मजात भक्त हैं, और वे जानते हैं समय का सदुपयोग। भक्त लोग समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि समय साक्षात भगवान है। भगवान गीता में कहते हैं कालो अस्मि, मैं समय हूं। समय का दुरुपयोग करना मतलब भगवान का निरादर करना, और भगवान का निरादर कर करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। वैसे ही समय का दुरुपयोग कर करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। तो भक्त लोग इस तथ्य को जानते हैं, इसलिए एक सेकेंड भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। अव्यर्थ कालम, काल को व्यर्थ में बिताते नहीं हैं, बल्कि उसका सदुपयोग करते हैं कृष्ण गुणानुवाद में, कृष्ण सेवा में, कृष्ण चिंतन में, इत्यादि में। तो प्रहलाद महाराज वैसे ही महान भक्त हैं, वे समय का दुरुपयोग एक सेकेंड भी नहीं करना चाहते थे। जब संड और अमर्क पढ़ा रहे थे तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करें क्या, जैसे कभी कभी कड़वा दवा होता है तो मां कहती है आंख बंद करके पी लेना है, ताकि कड़वापन न लगे। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज मानो आंख बंद करके सुन रहे थे जो गुरु लोग पढ़ा रहे थे। वो जानते थे कि समय का अपव्यय, समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन करें क्या बेचारे। लेकिन जब उनको अपना समय मिला तो समय का सही सदुपयोग किए और अपने मित्रों से कहे, भैया खेल कूद से क्या फायदा, बहुत खेल लिया हम लोगों ने, अब सुनो मैं कुछ बता रहा हूं। और वही बात प्रहलाद जी बताना शुरू किए। कहते हैं कौमार आचरित प्राग्नो धर्मान भागवतानि ह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। पांच साल के छोटे बालक हैं प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना आयु पर या व्यय पर डिपेंड नहीं करता है, एज पर डिपेंड नहीं करता है। कृष्ण भावना ट्रांसडेंटल है, इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो सकता है। तो पांच साल के अवस्था में इतना सुंदर बात कह रहे हैं, कहते दुर्लभम मानुषम जन्मम, मनुष्य जन्म के दुर्लभता पर वे बात कर रहे हैं। दुर्लभ दो प्रकार से है, एक तो बाजार में है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसलिए वो दुर्लभ है, और दूसरा कि एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः नहीं मिलेगा, ये दूसरा दुर्लभता है। भागवतम में दोनों दुर्लभता का वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद में कहा गया है निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य का देह सुलभम अभी प्राप्त है लेकिन खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो सुदुर्लभम उसको प्राप्त करना मुश्किल है। और यहां पर कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्मम, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, यानी इजिली अवेलेबल नहीं है, है ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। या अन्यत्र महाराज निमी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रार्पी दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रियदर्शनम, दुर्लभो मानुषो देहो, आउट ऑफ स्टॉक है। तो मानव जन्म के दुर्लभता के चलते कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य का जन्म है। तदपि ये दुर्लभ है लेकिन इसमें भी क्या है, अध्रुवम, हमको प्राप्त हो गया है लेकिन अध्रुवम, पता नहीं कितना दिन अपने पास रहने वाला है। हम में से कोई व्यक्ति कह सकता है कितना दिन ये रहेगा, कोई गारंटी के साथ में कोई नहीं बता सकता है कि हम कितना दिन रहेंगे। हम मूर्खता बस भले सोचते हैं कि बहुत दिन रहने वाले हैं, बहुत दिन रहने वाले हैं, नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है इसका पता नहीं है। ये सत्य है लेकिन सत्य से हम आंख कान नाक सब कुछ बंद कर लिए हैं, समस्त ज्ञान इंद्रियों को बंद कर लिए हैं, सत्य से मुख मोड़ लिए हैं, इसीलिए सत्य में विश्वास नहीं है और असत्य वस्तुओं में खूब विश्वास है। यदि यहां कोई आकर के रूमर फैला दे कि मंदिर के आगे एक आदमी आया है ट्रक पर रुपया लेकर के और बांट रहा है, सब लोग क्लास छोड़कर चले जाएंगे रुपया लेने के लिए, असत्य बात है, सत्य नहीं है, लेकिन उसमें विश्वास हो गया है क्योंकि वह हमें इंद्रिय तृप्ति में साधक बनेगा। तो असत्य पर विश्वास हो गया है, यानी संसार पर विश्वास हो गया है। ये संसार असत्य संसार है, परिवर्तनशील संसार है, इस पर विश्वास हो गया है। शास्त्र जो है बिल्कुल उल्टा है, शास्त्र कहता है सत्यम परम धीमहि, सत्य पर ध्यान करो, सत्य पर विश्वास करो। और सत्य यह है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि सबको मरना है। तो कुछ लोग कहते हैं कौन जानता है कौन कब मरेगा, है वो असत्य बुलवा देता है, कौन जानता है कौन कब मरेगा। हम यदि यह जान ले कि हमें मरना है, हम सोचते आज नहीं मरेंगे, 100 साल तक पूरा ही कर लेंगे, 100 साल के बाद ही मरेंगे। कुछ लोग तो डिसाइड भी करते हैं मुझे 100 साल जीना है, मैं भी इसमें से एक हूं, लोग डिसाइड करते हैं हमें 100 साल जीना है और उसके लिए खूब एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, समझते हैं कि शरीर जो है वो शरीर ही हमको 100 साल जिलाएगा, अन्य चीजों को भूल जाते हैं। तो सत्य से, सत्य को यदि पहचान ले हमें मरना है, अभी कोई समय नहीं है, तो हम तुरंत कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। चाणक्य पंडित कहते हैं कि वही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है जो समझ लेता है, जिसको एक कन्विक्शन हो जाता है कि नेक्स्ट मोमेंट मेरा डेथ है, नेक्स्ट मोमेंट आई एम गोइंग टू डाई एंड ही विल बिकम कृष्ण कॉन्शियस। यदि ऐसी हमें कन्विक्शन आ जाए, वो कन्विक्शन हम लोगों में नहीं आता है कि नेक्स्ट मोमेंट हमारी मृत्यु है, जो कि सत्य है, तो लोग कहते हैं आज करो सो कल करो, कल करो सो परसो, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है कई वर्षों, समझते बहुत दिन जीना है, है? बहुत दिन जीना है, जल्दीबाजी क्या करने का। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं भैया, अध्रुवम, ये निश्चित नहीं है कितना दिन जियोगे, लेकिन है मनुष्य जीवन अर्थदम, मीनिंगफुल है, ये काम का देह है, काम का देह है। देखिए मनुष्य देह का ही वर्णन श्लोक संख्या 8 तक किए हैं यहां पर। अब इसलिए मैं श्लोक ये लिया कि यहां से हम उसको तारतम्य देंगे। और मनुष्य देह में दो बात कहते हैं, अध्रुवम और अर्थदम, ये अनिश्चित है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, लेकिन है मीनिंगफुल, काम का देह है। तो इस काम के देह को लेकर के काम करना चाहिए जिसके लिए देह दिया गया है। तो इसको और खुलासा करते हैं, आगे कहते हैं, यथा ही पुरुषस इह विष्णु पादो सफल विष्णु पादोप सर्पणम यदेशम सर्वभूतानाम प्रिय आत्मेश्वर श्रुहित। इह मतलब इस संसार में ये मनुष्य देह है, इसका परम पुरुषार्थ है, इसका लक्ष्य है, इसकी सफलता इसी में है कि भगवान विष्णु का शरण ग्रहण किया जाए, कृष्ण का भक्त बन जाए। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन गया वही है अर्थदम, मीनिंगफुल देह, वही देह मीनिंगफुल है जिस देह को कृष्ण के सेवा में हम लगा दिए। अन्यथा और जितने भी देह हैं वो यूजलेस देह हैं, यदि कृष्ण के सेवा में नहीं लगाया गया हो तो। ये सत्य है, लेकिन इस बात को हम कहें तो कौन विश्वास करेगा। इसीलिए कहा गया, भक्त ने गाया है, हरि हरि विफले जनम गवायनु मानुष जनम पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विसखायनु। जो मनुष्य देह प्राप्त कर करके और राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, वह जानिया सुनिया विसखायनु, जान सुन करके विष पान कर रहा है, क्योंकि मनुष्य देह जो है राधा कृष्ण के भजन के लिए है। पता नहीं यह बात कब हमारे भेजा में आएगा, कब हमें विश्वास होगा, कब हम इंद्रिय तृप्ति को छोड़ करके और राधा कृष्ण के भजन में लग जाएंगे, मानव जन्म का को सफल बनाएंगे। सफलता इसी में है, पादोप सर्पणाम, सर्पणाम भगवान के चरणों की तरफ जाना, कृष्ण के संपर्क में रहना, यही मानव जीवन का दुर्लभता है, यही मानव जीवन की सफलता है। क्यों भगवान के शरण में ही, क्यों संसारिक वस्तुओं के शरण में क्यों नहीं? तो कहते हैं यद एष सर्वभूतानां प्रियम आत्मेश्वर सहित। भगवान समस्त प्राणियों के प्रिय हैं, परमात्मा है सबको गाइड करने वाले और सबके सुहृत हैं, सबके वेल विसर हैं। तो वेल विसर के शरण में जाने से हमारा वेल बींग होगा। यदि कोई चाहता है वेल बींग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, देन यू मस्ट टेक शेल्टर ऑफ वेल विसर। तो कोई कहता है कि नहीं नहीं, तभी संसार में आए हैं, नया नया जगह पर आए हैं, फिर वही का वही काम क्यों? क्योंकि जीव भगवान का सेवा नहीं करना चाहता था, भगवान से अलग होकर के और सुख भोगना चाहता था, तो भगवान ने हम लोगों को यहां भेज दिया। जीव को मालूम है जाय श्री श्री गौरताय रस विहार इस तरह से हनुमान की जाए। जीव को मालूम है कि वह अनकॉन्शियसली मालूम है कि वह कृष्ण का सनातन सेवक है। लोग सेवा करने से डरते हैं, हमारे भगत लोग भी सेवा करने से डरते हैं, बाहर के तो लोग दूर रहा, भक्त लोग भी सेवा करने से डरते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम सेवक हैं, लेकिन हम चूंकि सेवा नहीं करना चाहते हैं इसलिए इस संसार में आए हैं, यहां सुखी रहना चाहते हैं। उस अर्थदम मीनिंगफुल शरीर को लेकर के, मीनिंगफुल यह तब है जब विष्णुपाद आप सर्पणम, जब भगवान के शरण में जाया तब मीनिंगफुल है। लोग कहते हैं नहीं फिर वही काम करेंगे, अरे हम तो सुख भोगने आए हैं, आनंद भोगने आए हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह जोगे न देहिना। हे मेरे प्यारो मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, सुख का बात करते हो, जिसको जैसा देह मिला है वह उसे उस देह के अनुसार इस संसार में सुख प्राप्त हो जाता है। सुअर है, सुअर का सुख है गरम गरम ताजा मल खाना, उसमें उसे सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। सुख ऐन्द्रिकम दैत्याम देह जोगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते। सुख प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इतना गधे के समान कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, सुख जरूर प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही जैसे यथा दुखम मयावृत, जिस प्रकार से दुख, संसार में सब लोग सुख के लिए परिश्रम करते हैं, दुख के लिए कोई परिश्रम नहीं करता है। सब लोग घंटी डुला करते हैं, धन संपत्ति घर आए जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आए जय जगदीश हरे, कोई नहीं कहता है दुख दर्द घर आए जय जगदीश हरे। लेकिन बुलाए बिना बुलाए दुख आ जाता है, जब बिना बुलाए बिना नोटिस दिए दुख आ जाता है, ठीक वैसे ही सुख आता है अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए हम मूर्ख क्यों बने, इसलिए हम सुख के लिए परिश्रम क्यों करें। मनुष्य देवन दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए नहीं है। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं मनुष्य जीवन की सार्थकता है विष्णु पादो सर्पणम, भगवान विष्णु का शरण लेने के लिए मनुष्य देह है। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, ये सुख दुख के चक्कर में मत पड़ो, ये दलदल है। आप लोग दलदल जानते हो, कितने लोग दलदल जानते, हाथ उठाओ तो दलदल जानने वाले, कितने लोग दलदल का एक्सपीरियंस किए हो हाथ उठाओ तो, कम ही लोग हैं। दलदल ऐसा स्थान होता है कि एक बार फंस जाओ तो फंसते ही जाओगे, निकलना मुश्किल है उसमें से। तो सुख और दुख के दलदल में जो फंस जाता है उसे निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रहलाद जी वार्निंग दे रहे हैं कि भैया देखो सुख दुख के दलदल में फंसो, जिस प्रकार से बिना बुलाए दुख आता है वैसे ही बिना बुलाए सुख भी आएगा, इस चक्कर में मत पड़ो, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति मत करो। तथा प्रयासो न कर्तव्यो, इसके लिए प्रयास मत करो, अपने शक्ति और समय को बर्बाद मत करो सुखी होने के लिए। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, न था और न होगा, यही संसार का स्वरूप है। जिसने संसार बनाया है उसने लिख दिया है दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार दुख का घर है और ये परिवर्तनशील है। तो दुख के घर में सुख की परिकल्पना करना मात्र मूर्खता है। तथा प्रयासो न कर्तव्य, प्रयास भी मत करो, डोंट डेयर टू एक्वायर हैप्पीनेस। तथा प्रयासो न कर्तव्यो, बिल्कुल सोचो भी मत, मन से निकाल दो, कि मैं सुखी होऊंगा, उसके लिए प्रयास मत करो। यथा आयुर्वयम परम, क्योंकि इस प्रयास में हम शक्ति का संचय करते हैं और अपने आयु का संचय करते हैं। आयु बर्बाद हो रहा है और शक्ति बर्बाद हो रहा है, किस काम में? नज हां, सुख की प्राप्ति में और दुख की निवृत्ति में। समय और शक्ति दोनों बर्बाद हो रहा है। न तथा बिंदते क्षेम, अरे गधा के समान परिश्रम करो, मर जाओगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। न तथा बिंदते क्षेम, इससे कल्याण नहीं होगा। यदि कल्याण चाहिए तो मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद के शरण में जाओ, कृष्ण के शरण में जाओ। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, उन भगवान से दयालु कोई नहीं है, उनके शरण में जाना चाहिए। उनके शरण में जाकर के हमारे दुख से निवृत्ति भी हो जाएगी और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हम दो ही चाहते हैं, दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। एक बार ऐसे ही मैं कहीं प्रवचन कर रहा था तो एक आदमी कहा कि हम भगवान को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, दुख से निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए हम अपने से प्रयास करना चाहते हैं। क्या मूर्खता है! कब जाएंगे भगवान के पास? जब सब दरवाजे बंद हो जाएं। चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तृसभ। जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, अरे चलाकी करो ना, शुरू में ही लग जाओ तो मुंह वो दिन देखना ही नहीं पड़ेगा, दुख का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा और सुख ही सुख रहेगा। केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निताय, केवल आनंद कंद, आनंद ही आनंद है भगवान का भजन करने में। तो मुकुंद चरणाम्बुजम, न तथा बिंदते क्षेम, इस संसार में कल्याण नहीं है जब तक से हम मुकुंद का शरण ग्रहण न करें। भगवान मुकुंद है, मुक्ति दाता है, वो सब प्रकार से मुक्ति देंगे, दुखों से मुक्ति देंगे और सुख की कामना से भी मुक्ति देंगे। केवल सुख ही सुख रहेगा। ततो एत कुशलम क्षेमाय भवमाश्रित, जब तक से हाथ पर काम कर रहे भैया, जब तक हाथ पर बिल्कुल ठीक है, होश हवास है, तो पुरुष को चाहिए, सब व्यक्ति को चाहिए कि शरीर से, हाथ पैर से, बुद्धि से भगवान का भजन करें। प्राय लोग कहते हैं अरे भजन तो बुढ़ापे में होता है, बुढ़ों के लिए है, जवान लोगों के लिए नहीं है। ऐसी बहुत धारणा है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी बड़ी धारणा है। कोई नया लड़का भजन करना शुरू करे 25 साल का, अरे ये तो पागल हो गया है, तुम्हारे लिए थोड़े है, वो बुढ़ापे के लिए है भजन। सही में बुढ़ापे में भजन काम आता है, लेकिन बुढ़ा है कौन? सब तो बुढ़े ही हैं। कौन जवान हो रहा है? 5 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, सब बुढ़े ही होते जा रहे हैं, कोई जवान हो ही नहीं रहा है। इसलिए भजन सबको करना चाहिए। यह तो क्योंकि जिसको हम आज बुढ़ापा कहते हैं वो कब फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कल तक हम जवान थे यार, आज बुढ़ा हो गए पता भी नहीं चलेगा। दर्द होना शुरू करेगा शरीर में, मेंटल फिजिकल सब प्रकार से। इसीलिए प्रहलाद जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं, ततो यतेत कुशलम क्षेमाय भवमाश्रितम शरीरम पौरुषम यावन विपद्यते पुष्कलम। जब तक से शरीर स्वस्थ है, मन बिल्कुल रास्ते पर है, बुद्धि काम कर रहा है, तो भजन करना चाहिए। अब ये तीन श्लोक है, 6, 7 और 8। इस श्लोक में दुर्लभता को वर्णन कर रहे हैं, अध्रुवम अर्थदम, अध्रुवम शब्द को वर्णन कर रहे हैं ये तीन श्लोक में। अब जैसे अर्थदम का वर्णन किए कि मानव जो है कितना सुंदर है भजन करने के लिए, अब अध्रुवम का वर्णन कर रहे हैं। तो कल हिजोलेंस भक्त चारू महाराज बताए कि सब लोगों को 100 साल का जीवन प्राप्त है, 500 वर्ष शतम ही आयु, तदर्थम च चाजितात्मनः निष्फलम यस्तौ रात्रौ सेते अंध प्रापितस्तमः। ही मतलब निश्चय ही, निश्चय यहां पर आचार्यगण कहते हैं। ही का मतलब प्रायः संस्कृत में होता है निश्चय, लेकिन यहां पर ही का अर्थ है प्रायः या प्रसिद्धि, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य प्राणियों का आयु जो है वो 100 साल का है। यदि निश्चयता के रूप में ही लिया जाए तो 100 साल से पहले कोई मरना नहीं चाहिए। पुंसो वर्ष सतम ही मतलब प्राय होता है निश्चय, लेकिन निश्चयता के लिए नहीं कहा गया है प्राय या प्रसिद्धम। ऐसा कहा जाता है कि 100 साल तक। अब 100 साल को डिवाइड किया गया है, 100 साल में कहते हैं 50 साल चला जाता है सोने में, बाकी रह गया 50 साल। उस 50 साल में भी आज के श्लोक में कहा गया है 20 साल चला जाता है लड़कपन में और 20 साल चला जाता है बुढ़ापे में। बचा हुआ कितना बचा समय? 10 साल। और 10 साल चला जाता है हाय हाय करने में। वो आगे के 8वें श्लोक में बताया गया है, दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलियसाम शेषम गृहे सशक्तम प्रमत्त श्याम प्रपत्त स्यापयाति ही। विशेष जो 10 साल बचा रहता है, कहते हैं दुरापुरेण कामेन, जो कभी पूरा नहीं होने वाला है काम मतलब इंद्रिय तृप्ति, उस इंद्रिय तृप्ति में 10 साल लग जाता है। इस प्रकार से ये 100 साल का अकाउंट रहा। ये 100 साल का अकाउंट कैसे बिता? हे महात्मा आंख खोल कर सुनो, 100 साल का अकाउंट मैं दे दिया, अभी कैसे बीतता है 100 साल? 50 गया सोने में और 20 गया बचपना में, 20 गया और 10 गया हाय हाय करने में, मोटा मोटी समझ गया ना। एक महात्मा कहते हैं 100 साल का, मनुष्यों को 100 साल कैसे प्राप्त हुआ? तो मैं कई एक बार कह चुका फिर भी कह देता। वो महात्मा कहते हैं वास्तव में जब ब्रह्मा जी सबका जीवन का आयु निर्धारित कर रहे थे तो सभी प्राणियों को केवल 40 साल का आयु दिए, बस 40 साल से एक छटाक ज्यादा किसी को नहीं है। लेकिन मनुष्य बड़ा लोभी होता है स्वभाव से ही, तो सबको दे दिए कि 40 साल तुम लोग उम्र है जाओ। सब जा रहे थे और मुंह लटका करके मनुष्य वहीं खड़ा था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है? तो कहा कि पितामह, इतना दूरी तय करके जाएंगे हम नीचे पृथ्वी लोक पर, ये 40 साल में क्या होगा, कुछ और थोड़ा जन्म आयु बढ़ा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो अभी तो मैं बांट दिया हूं, अब किसी का कोई आएगा लौटाएगा मिलेगा तो मैं तुमको बाद में दे दूंगा। कुछ समय के बाद एक गधा भागते भागते आया और कहा कि ब्रह्मा जी आप बहुत ज्यादा समय दे दिए हमको, ये 40 साल तो मुहूर्त हो जाएगा, ये खूब लादते हैं हमारे पीठ के ऊपर धोबी लोग, बैठ भी जाते हैं, डंडा मारते हैं और खाने के लिए एक मुट्ठी घास देते हैं, इसलिए तो गद्दा है तुम है। तो कहा कि हमें इतना जीवन नहीं चाहिए, ये 20 साल आप ले लीजिए, 20 साल में अपना काम चल जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तो 20 साल ले लिए। इसलिए गद्दा गाय भैंस इत्यादि जो पशु लोग हैं उनका जीवन 15 से 20 साल का ही होता है। तो 20 साल ब्रह्मा जी ले लिए, मनुष्य को बुलाए, मनुष्य फोन उन करता था ब्रह्मा जी के पास कि उधर और कुछ है, तो ब्रह्मा जी बुलाए और कहे कि देखो भाई कुछ जीवन मिला हुआ है, चाहिए तुमको? कहा बिल्कुल, मैं तो आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था, हम तो वेटिंग लिस्ट में है। तो कहा कि लेकिन ये जो जीवन है ये गधे का है। तो मनुष्य चलता है, कोई बात नहीं, वो गधे का जीवन है वो चलता है। फिर भी खुश नहीं था। तो ब्राह्मण, अरे अब क्या चाहिए? कहा थोड़ा और मिल जाएगा तो अच्छा होगा, आपका कृपा होगा। तो ब्राह्मण, ठीक है जाओ जाओ, कोई आएगा देगा तो। तो कुछ समय के बाद कुत्ता आया और कहता है, ब्रह्मा जी बड़ी परेशानी है, पितामह सब लोग डंडा मारते हैं, खाने को नहीं मिलता है, भो भोकना करता होता, कितना बड़ी परेशानी है। तो आप ऐसा करो कि 20 साल हमारा जीवन आप ले लो। तो ब्रह्मा जी मनुष्य को बुलाए, कहे क्या 20 साल और मिला है, चाहिए तुमको? कहा लेकिन है कुत्ते का, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। समझ गए हरदास? ओ हरदास कहां हो? तो कुत्ते का जन्म 20 साल मनुष्य को मिल गया, तो टोटल कितना हो गया मनुष्य के पास? 80 साल हो गया। फिर भी मुंह लड़का खड़ा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे अब क्या चाहिए भाई? कहा आपकी अहेतु की कृपा होगी, थोड़ा और मिल जाए तो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है जाओ, कोई आएगा तो। तो एक उल्लू आया, उल्लू जानते हैं ना, इसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता, कल रात में दिखाई पड़ता है। वो आया, कहा कि ब्रह्मा जी लोग बड़े परेशान करते हैं, दिन में दिखाई नहीं पड़ता, डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं बच्चे, और रात में कुछ मिलता नहीं है, बड़ी परेशानी है। तो 20 साल दे दिया अपना जीवन। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बुलाया, कहा कि उल्लू का जीवन है, कहा चलेगा, वो भी चलेगा। तो 20 साल उल्लू का ले लिया। तो इस प्रकार से कितना हो गया? 100 साल। अब आप सही में जोड़ो, देखो मनुष्य जीवन है क्या। यदि इसको डिवाइड किया जाए, 50% गया सोने में और जो 50% बचा है, तो 20 साल तो गया, जैसा कि यहां पर कहा गया है, बालकपन में। उसके बाद गधा के समान जो शरीर, गधा का जो देह है, आयु है, वो मिलता है। तो गधा के समान काम करते हैं 40 साल से 60 साल के बीच में, खूब गधा के समान 40 साल तक बीत जाता है, खाने पीने सोने पढ़ने लिखने नौकरी खोजने स्टेबल करने शादी विवाह बाल बच्चा पैदा करने में। अब 40 से 60 साल का जो समय है वो अपना नहीं, अपना तो केवल 40 साल तक है। 40 से 60 साल का जो समय है गधे का, खूब गधा के समान काम करते हैं। और 60 साल के बाद का जीवन किसका है? कुत्ते का। कुत्ता भौंकता है। तो 60 साल के बाद शरीर में शक्ति नहीं रह गई है, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो घर में बैठे बैठे बच्चे, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बहू कहेंगे ऐसे मत करो, तुम लोग ज्यादा पैसा खर्चा करते हो, हम तो पहले कम पैसा खर्चा किए, इतना भाड़ा, इतना क्यों सब्जी खरीदने में लगाते हो, भोगते रहते हैं दिन भर, फिर एडवाइस देते हैं, बच्चे लेते नहीं है, एडवाइस देते हैं फ्री में। तो हो गया 80 साल और बाद में दिखाई नहीं पड़ता है, तो बचा कुछ किसका है? दिखाई नहीं पड़ता है। एनीवे, ये जोक नहीं है, ये सत्य है, ये जीवन का सत्य। जैसे प्रहलाद जी और है वैसे ही जीवन का सत्य है। चलिए आज का श्लोक है, कहते हैं, मुग्धस्य बालो कौमारे किरणतो याति विंशति जरया ग्रस्त देहस्य। दोनों में अंतर है। यात्य कल्पस्य विंशति। तो मोटा मोटी आज का जो श्लोक है इसमें इतना ही बताया गया है कि 20 साल तक बाल्य और किशोर अवस्था में बीत जाता है और 20 साल बुढ़ापे में बीत जाता है। अब शंकराचार्य भी ऐसा ही कुछ कहते हैं कि भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख, गोविंद का भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते बाल्यावस्था क्रीणाशक्ता, जब बाल्यावस्था को यहां पर कहा जाता है, बाल्य पौगंड दोनों को बाल्य कहा जाता है। 5 साल तक बाल्यावस्था होता है, 5 से 10 जो होता है पौगंड होता है, उसके बाद किशोर होता है। तो यहां पर कहा गया है मुग्धस्य बाले कैशोरम तृणतो याति विनशति। जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था को मुग्धस्य कहा गया है। मुग्धस मतलब अज्ञानता से परिपूर्ण, सही क्या है गलत क्या है इसका भान नहीं होता है बाल्यावस्था में। तो बाल्य और पागंड दोनों को बाल्य कहा गया है। 5 वर्ष से पहले भान नहीं होता है कि हम नंगा घूम रहे हैं कि कपड़ा पहने हैं, हम मलमूत्र में ऐसे ही पड़े हुए हैं कि स्नान करना चाहिए, इस सब का भान नहीं होता है। मिट्टी खाना सही है कि नहीं सही है इसका भान नहीं होता है। ये भी पहचान नहीं होता कि मेरी मां कौन है, मेरे पिताजी कौन है। तो छोटा बच्चा हो, 2 दिन का जन्मा हुआ, 4 दिन का जन्मा हुआ, तो कहते मुग्ध, उसे कोई ज्ञान नहीं है। 5 साल के बाद से ज्ञान होता है, तब वह कुमार होता है, उसे कुमार अवस्था के निर्गत कुमार आचरित प्राग्नो। तो प्रहलाद जी कहते हैं 5 साल से ही भागवत धर्म का अनुसरण करना चाहिए, 5 साल से ही भजन करना शुरू करना चाहिए। तो मुग्धस्य बालय, तो 5 साल तक कुमार, और 5 से 10 ये भी बाल्यकाल हुआ, यानी यह बाल्यकाल सीखने का बाल्यकाल हुआ कि यह सही है यह गलत है। सीख तो लेते हैं कि सही है कि गलत है, लेकिन हम उसका सही सही आकलन नहीं कर पाते हैं। कोई बतलाता है कि ये सही है और ये गलत है, बतलाने पर हम सीखते हैं, इसलिए ये भी मुग्धा अवस्था है। अब ये दोनों अवस्था, ये बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, बाल्य और पौगंड तो मुग्ध अवस्था है ही, लेकिन बाल्य का अंतिम भाग यानी पौगंड और किशोर अवस्था में हम लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। तो एक आचार्य कहते हैं कि वो पढ़ना लिखना भी यदि कृष्ण से संबंधित न हो तो पढ़ना लिखना भी खेलवाड़ करना है, वो भी खेलना है। आजकल की पढ़ाई लिखाई खेलवाड़ है और कुछ नहीं है। खेलवाड़ मतलब जिसे हमारे जीवन में कोई सार्थकता न हो लेकिन आनंद आता हो, उसे हम खेल कहते हैं। तो आजकल का इस स्कूल कॉलेज का जो पढ़ाई है वह वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है, ओनली किताब का एजुकेशन है। उसका जीवन में कितना सार्थकता है वह नहीं प्राप्त हो पाता है, तो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 20 साल तो चला जाता है इसी काम में। लेकिन यदि इसी 20 साल को जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राग्नो, कुमारा अवस्था से यदि कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा दिया जाए, कृष्ण भक्ति में लगा दिया जाए, फाउंडेशन को स्ट्रांग किया जाए, हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे लोग होते हैं जिनके बाप मां कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, वो बचपन से ही जगन्नाथ जी को, नृसिंह भगवान को, वो राधा कृष्ण को ज्यादा नहीं समझते हैं, चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन बच्चे लोग जगन्नाथ और नरसिंह भगवान से आत्मसात ज्यादा करते हैं। तो बच्चे लोग बचपन से ही भजन करना शुरू करते हैं और बच्चे लोग बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना का यही स्वभाव है, कृष्ण भावना का यही स्वरूप है, आनंद प्रदायनी, यू नो भगवत भक्ति का यह स्वरूप है कि वो आनंद देता है। और जब किशोर अवस्था को प्राप्त करते हैं, जब पढ़ने भी जाते हैं और यदि इनका फाउंडेशन है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तो उनको पढ़ने में भी आनंद आता है, पढ़ने में आनंद आता है, क्योंकि वो लोग मिसगाइडेड नहीं होते हैं, वे गाइडेड होते हैं बचपन से हैं। पढ़ाई करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ाई करेंगे, लेकिन गाइडेड होंगे। इसलिए आज प्रचार का बहुत जरूरत है। 21 करोड़ ऐसे यूथ लोग हैं, पटना में मैं भी था, वो प्रेस रिपोर्टर लोग हमसे पूछ रहे थे कि इस्कान क्या करेगा, अभी क्या कर रहा है। तो हमारे पास 21 करोड़ ऐसे यूथ लोग हैं, 21 करोड़ यूथ हैं भारत में, जिनको यदि गाइड न किया जाए तो मिसगाइडेड होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इंप्लॉयमेंट नहीं है, इंप्लॉयमेंट नहीं होगा, जॉब नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे। जो सज्जन हैं, जिनको संस्कार है थोड़ा, कहा जाता है जब बालक जन्म लेता है तो एक माह से नहीं दो माह से जन्म लेता है, एक माह तो वह जो जन्म दिया और दूसरा माँ है संस्कृति और सभ्यता। तो जिसको संस्कृति सभ्यता है वह तो बेचारा अपना किसी प्रकार से गरीबी में भी अपना गुजार लेगा, लेकिन जिसका सभ्यता संस्कृति नहीं है तो या तो चोर डकैत बनेगा, नहीं तो टेररिस्ट बनेगा, और नहीं तो क्या बनेगा। आप लोग डेली देख रहे हो, न्यूज में पढ़ रहे हो, कैसे इंडियन छोटे छोटे बच्चों को ये टेररिस्ट लोग सिखा रहे हैं मारने का इत्यादि इत्यादि क्या क्या। तो ये नौजवान लोग यदि उनको डायरेक्शन सही न दिया जाए, और ये जो 20 साल का अवस्था है ये गाइड करने का और मिस गाइड करने का। साइंस भी स्वीकार करता है कि 25 साल तक सीखने का समय होता है, जो भी एक्सपेंशन होता है 25 साल तक, शरीर भी बढ़ता है 25 साल तक, शरीर 25 साल के बाद बढ़ेगा नहीं, उतना का उतना हो गया, 4 फीट का 4 फीट रहेगा, 5 फीट नहीं हो सकता कितना भी कुछ करो, बल्कि शरीर में खराबी होना है, मोटा होना शुरू हो जाएगा या दुबला होना शुरू हो जाएगा, बीमारियां आनी शुरू 25 साल तक। वैसे ही भेजा में भी 25 साल तक सब कुछ फर्स्ट क्लास जाता है, गीता का पूरा श्लोक याद कर सकते हो। जितने यूथ लोग हो इसे याद रखो, तो ये विंशति यानी 20 या 25 साल तक का समय है, बड़ा बहुमूल्य समय है। यदि इस 20 से 25 साल को कृष्ण भावना में लगा दिया जाए तो और सब तो उसके शुद्ध से काम चल जाएगा। इस जो इन्वेस्ट करेंगे 20 साल कृष्ण भावना में, तो जवानी को संभालना बहुत आसान हो जाएगा, और फिर बुढ़ापे में इतना शक्ति होगा कि शरीर में रहते हुए भी हम शरीर से अलग हो जाएंगे। जैसे पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े थे, 15 दिन तक प्रतीक्षा किए भगवान के आगमन का, लेकिन उनके शरीर पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था, यहां एक कांटा चुभ जाता तो नानी मरने लगती है, वहां तो सरसैया पर पड़े हुए थे, क्योंकि अपने को शरीर से अलग कर लिए थे। प्रभुपाद जी भी वैसे हैं। तो ये मुफ्त में आएगा, जरयाग्रस्त देहस्य यावत कल्पस्य विंशति। तो बुढ़ापा जरया ग्रस्त देहस्य, बुढ़ापा में दुख ही दुख होता है, बचपन में मुग्धा अवस्था बिल्डरमेंट, जवानी में हाय हाय, और बुढ़ापा में दुख, विभिन्न प्रकार का दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, ये दुख ही दुख होता है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि इन सब से परे हो जाए, हम बिल्डर न रहें, हाय हाय से बचे और बुढ़ापा में दुख से परे हों, तो उसको चाहिए कि मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद का शरण ग्रहण करे बचपन से, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस हम बचपन से करें। इसलिए प्रहलाद कहते हैं कौमार आचरित प्राग्नो धर्मान भागवतानि हा। भागवत धर्म का मतलब होता है यह समझना कि सब भगवान का है और सब कुछ का उपयोग सदुपयोग भगवान की सेवा में होनी चाहिए। ये देह और देह संबंधित सब वस्तुएं भगवान की है, ये है भागवत धर्म। आज समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है। हम मां के गर्भ से जन्म लिए हैं लेकिन मां के पास संस्कृति नहीं है। आज संस्कृति खत्म हो चुका है तो दूसरी जननी खत्म हो गई है और उस जननी का प्रतिरोपण हम लोगों को करना है, कृष्ण भावना संघ के भक्तों को करना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी स्पेशल महीना दिए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना, लोगों को इस सत्य को बताने के लिए। जो प्रहलाद महाराज इस सत्य को बताए, इसके लिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये सत्य है कि 20-25 साल बीत जाता है बचपनापन में और बैलेंस 20 साल बीत जाता है बुढ़ापे के दुख से निवृत्ति में, 10 साल में हाय हाय लगा रहता है, तो ये 50 साल पता नहीं कैसे बीत जाता है। इस सत्य को बताना चाहिए इसलिए कि लोग इसमें ना फंस कर करके कृष्ण भावना को स्वीकार करें, क्योंकि भक्तों में कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। हम लोग ये पुस्तक वितरण नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमें ज्यादा स्कोर मिल जाए, ज्यादा पैसा मिले। हम इसलिए कर रहे हैं, भाव यह होना चाहिए कि जब लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनका कल्याण होगा। हम उनके कल्याण के लिए पुस्तक वितरण कर रहे हैं, न कि स्कोर बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, बल्कि जन कल्याण के लिए। जब लोग पढ़ेंगे तो उनका कल्याण होगा। इस सत्य को जानेंगे कि हरि हरि विफले जन्म गवायनु, मैं व्यर्थ में जन्म गंवा रहा हूं। लोगों के पास आज ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने की जरूरत है। तो सब भक्त लोग बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो बुक डिसीजन कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को सराहनीय कार्य में योगदान देना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से लग करके पुस्तक वितरण करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अरे लो, शंकराचार्य के मैं श्लोक तो भूलिए गया बोलना, बोल देता हूं। मैं तीन श्लोक, तीन लाइन या था, चौथा लाइन नहीं था, तो मैं मुकुंद माधव प्रभु से पूछा और वहीं पर संजीव का नाम क्या नया वाला, श्याम गुपेश, तो इन्होंने सुन लिया। हमारा सेक्रेटरी विष्णु उससे पूछा, तो सब लोग खोज खा करके दिए हैं हमको। बाल्यावस्था क्रीड़ासक्ता, तरुणावस्था तरुणी सक्त्या, वृद्धावस्था चिंता सक्ता, परमे ब्रह्मणी कोपी न सकता। तो ये लोग दोनों लोग वो दिया, हमारा विष्णु नया चीज दे दिया। बाल्यावस्था तावत क्रीड़ासक्ता, तरुणा तावत तरुणी सक्ता, वृद्धा तावत चिंता सक्ता, चिंता मग्न परमे ब्रह्मणी कोपी न लग्न, दोनों का अर्थ है कहीं है। तो बाल्यकाल में क्रीड़ा में लगे रहते हैं, तरुणावस्था तरुणी सकता, और जवानी में लड़कीबाजी करने में या पत्नी के साथ में जो भी कहो तरुणी सकता, वृद्धावस्था चिंता सकता, और बुढ़ापे में चिंता में लगे रहते हैं। यदि हम बुढ़ापे में चिंता करें कि मरने के बाद कहां जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन हम उसका चिंता नहीं करते हैं मरने के बाद क्या होगा, हमारी इतना धन कमाया इसका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, नाती पोतों का क्या होगा, इसका चिंता है। हम मर रहे हैं, हमें अपना चिंता नहीं है, जो मरने वाला है उसका चिंता है। तो शंकराचार्य कहते हैं परमे ब्रह्मणी कोपी ना सकता। दुख की बात है कि परब्रह्म भगवान में कोई आसक्त नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए। हम लोगों को परब्रह्म भगवान में आसक्त होना चाहिए, तो कृष्ण भावना संघ इसी के लिए स्थापित किया गया है, भगवान में आसक्त हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हनुमान जी यदि प्रश्न होगा तो पूछना, प्रश्न ही है। हनुमान या कमेंट्री कुछ और ही होता है, तो
कमेंट्री नहीं बताऊंगा। हरे कृष्णा। आप बता रहे थे अभी कि हम लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो आप यही बताइए।
मरने के बाद प्रसाद महल में जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं अभी से। बोलिए,
तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग?
हम लोगों को चाहिए अपना डेस्टिनेशन तय करना। मरने के बाद हमें अपने घर जाना चाहिए जहां से हम आए हुए हैं। जो गीता भागवत नहीं जानते कहते हमारे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया, स्वर्गवास हो गया। और जब स्वर्गवास हो गया, वैकुंठ वास हो गया, तो वो स्थान है। मरने के बाद कहां जाना चाहिए? वैकुंठ जाना चाहिए। तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, मुफ्त में टिकट नहीं मिलेगा। मरने के बाद वैकुंठ जाना चाहिए। जन्म लाभ परापुंसा अंत नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हो जाए, फिर तो नारायण देख लेंगे। और कोई प्रश्न? पीछे संदीप ने।
हरे कृष्ण जी, शरीर के द्वारा तो हमको दुख मिलता है, दुख का अनुभव करते थे विश्व पिता में थे।
थोड़ा दूर से बोलो।
विश्व पिता में थे,
क्या बोला फिर से बोलो।
नहीं नहीं, शरीर के द्वारा हमको तो दुख तो मिलता है, शरीर के द्वारा हमको दुख मिलता है, शरीर है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। विश्व पिता में 12 महान से महाभागवतम थे, वो तो कृष्ण भावनाभावित थे, वो तो दुख का अनुभव होने के लिए हम अगर उस स्तर पर रहेंगे, हम अगर कांटा भी चुभेगा तो हमारे स्टार का कीर्तन करें तो हमको दुख दत्त बर्दाश्त करना ही पड़ता है, तो हम कैसा परिवर्तन हो जाए उसमें?
आप भी महाभागवत बन सकते हैं, ऐसा बात नहीं केवल वो रिजर्व था, ट्रेडमार्क था कल भिदाम पितामह भीष्म के लिए। सबको सु अवसर है महाभागवत बनने का। अंतर इतना ही है कि पितामह भीष्म ने सदुपयोग किया, हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अभी सदुपयोग करो। नवदा भक्ति का प्रयास करो, वैदिक भक्ति का प्रयास करो, जो प्रभुपाद जी बताए हमेशा करो। अभी स्थिति पर हम सब पहुंच सकते हैं, हम लोग बहुत पहुंच चुके हैं। आप रोड पर जा रहे हो, 10 लोग गाली देंगे, हम क्या करेंगे? सब चले जाएंगे, पहले को गाली दे झापड़ मारे बदमाश भरे मर जाएंगे, मार झगड़ा करेंगे। अभी थोड़ा सह लेते हैं, सहनशीलता आई है, थोड़ा एडवांसमेंट हुआ है।
हरे कृष्णा प्रभु, वैकुंठ और गोलोक वृंदावन में क्या फर्क है?
बहुत फर्क है, जैसे लखनऊ और दिल्ली में फर्क है। वैकुंठ जो है वो स्पिरिचुअल जगत में है, वो नारायण का निवास स्थान है, वहां का जो भाव है वह ईश्वरमयी भाव है। और गोलोक वृंदावन जो है भगवान कृष्ण का गोलोक धाम, निज धाम नि तले तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते प्रभाम निचया विहिता जेन गोविंदमादि पुरुषम तमम बजामी। वो गोलोक वृंदावन जो भगवान गोलोक विहारी कृष्ण का धाम है, जो अपना घर है। तो गोलोक और वैकुंठ में ठीक वैसे ही अंतर है जैसे एक बाप हो और वो जज हो। मान लीजिए आपके पिताजी जज हैं, तो वो घर पर हैं और वो कोर्ट में हैं, दोनों का ही है। जज हैं तो कोर्ट में हैं और घर पर हैं तो घर पर हैं। अब घर और कोर्ट में अंतर क्या है? घर और कोर्ट में अच्छा कहां लगे आपको बताइए?
घर अच्छा
लगे, जहां पिताजी हैं हम उनके कंधे पर चल सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। कोर्ट में तो यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड करना पड़ेगा। तो वैकुंठ जो है वो कोर्ट है और जो घर है वो गोलोक वृंदावन है। तो हम लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे, वैकुंठ जाने की चिंता मत करो।
ये बोल रहा हूं।
और कोई प्रश्न? अच्छा, अभी बुक से मैराथन का मुझे याद आ रहा है, कल मैं बाहर निकला तो वहां पोस्टर पर लिखा हुआ है श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन, छोटा है और नीचे लिखा है मैराथन 2015। तो हरिदास प्रभु वहां खड़ा था और एक आदमी आया,
देखा, कहता है मैराथन कहां से कहां दौड़ने का है। हरिदास सोच रहा था ये क्या बोल रहा है, हरिदास तो अपने धुन में था। तो बोला कि मैराथन कहां से कहां दौड़ने का है और कब है, 2015 तक किया है। एनीवे समथिंग टू हाँ।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि भीष्म पितामह ने ऐसा कौन सा जन्म में ऐसा कर्म किया था कि उनको इतना बाण खाने को मिला।
ऐसे मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा कर्म किया था जिसने बाण पर सोना पड़ा, लेकिन मुझे ये पता है कि पूर्व जन्म में वे 8 वसुओं में से एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम था प्रभास। और एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम से होकर के जा रहे थे तो उनके पत्नी की इच्छा हुई, वशिष्ठ मुनि के पास एक गाय है, नंदी गाय, कामधेनु गाय, तो कामधेनु को प्राप्त करने की इच्छा हुई प्रभास के पत्नी को, तो उसने कहा, तो प्रभास अपने भाइयों के साथ में मिल करके और कामधेनु को जबरदस्ती ले जा रहे थे, तो वशिष्ठ जी कामधेनु को छुड़ाए और इन लोगों को श्राप दिए थे जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मनुष्य देह प्राप्त करना पड़ा था। उनके पिताजी का आशीर्वाद था कि वे तब तक जीना चाहेंगे जब तक से वे जीना चाहें, कोई मार नहीं सकता है। अब यह जो सरसैया पर पड़े थे जरूर कहीं कुछ कारण होगा, लेकिन मुझे ऑफ हैंड अभी याद नहीं आ रहा है, किसी को याद हो तो बता दें अच्छा होगा सबके फायदा के लिए। यस हनुमान जी को याद है, बोलिए। अरे आपका आवाज ऐसे भी अच्छा है।
एक समय पहले जीवन में एक क्षत्रिय थे और एक सांप आधा मरा हुआ था, अब गिरा हुआ था, उन्होंने धनुष कोठे से उठाया और जो कांटे का एक पेड़ था ना, हाँ, उसको पर फेंक दिया तो सारे कांटे उसके पेट में घुस गए। तो उसका
ये भक्तमाल में कथा है।
हाँ,
भक्तमाल प्रमाणित नहीं है ये कथा, मैं भी जानता था लेकिन मैं अप्रमाणिकता चलते नहीं बोल पा रहा था कि भक्तमाल में है, कहीं शास्त्र का उक्ति हो तो
नहीं, भागवतम में नहीं,
पुराणों में हो, भागवतम में हो, तो भक्तमाल में बहुत बना बनाया चुटकुल्ला है। एनीवे इससे ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्या हुआ वो तो डिटेल है, शिक्षा ग्रहण करो कि भक्ति में इतना शक्ति है कि संसारिक दुख उसके सामने नगण्य है। सत्सैया पर पड़े हुए थे फिर भी राम राम, कोई तकलीफ नहीं था। तो भक्ति पावरफुल है, इसलिए हम लोगों को भक्ति करना चाहिए, न कि हम एक माला जप करें कांटा पर पैर रखते हैं, देखता हूं कैसा लगता है, वो मत करना कभी। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, हरिदास का क्वेश्चन है, वही मैं सोचा कि हनुमान जी पूछे, हरिदास के अभी तक तो नहीं पूछा है।
हरे कृष्ण गुरु जी, आप बोले कि संसार असत्य है।
अच्छा, संसार सत्य है?
नहीं, आप पहले बोले कि संसार असत्य है, ये भौतिक जगत के लिए जो बाहर लोग के लिए असत्य है ना, ये भक्त के लिए असत्य है।
सबके लिए असत्य का मतलब परिवर्तनशील, टेम्पररी।
हाँ ठीक है, ये परिवर्तनशील ठीक है। प्रभुपाद महाराज ने ऑल्ड वर्ल्ड में ये जो संसार बनाया, भक्ति का संसार बनाया, तो प्रभुपाद महाराज कोई सुखी नहीं रहे क्यों?
क्या प्रश्न कहा था?
प्रभुपाद महाराज जो ऑल्ड वर्ल्ड में हम संसार बने को जो भक्ति का संसार बनाया,
तो भक्ति भक्ति का संसार परिवर्तनशील नहीं है, भक्ति का संसार असत्य नहीं है,
वो सत्य है। ये कितने साल तक रहेगा ये सत्य?
जब तक से लोग भक्त बने रहेंगे।
नहीं, भक्त बने रहे तो आज भक्त बनेगा काल चला जाएगा, फिर 20 साल के बाद फिर आएगा, फिर ऐसे थोड़ी चलेगा।
नहीं नहीं, जब देखो जब तक से संसार है तब तक भक्ति होगा ही, अंधकार में प्रकाश को लाया जा सकता है, प्रकाश में अंधकार को नहीं ला सकते हो। तो भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति जो है प्रकाश है। कृष्ण सूल सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाहीं माया अधिकार। तो कृष्ण जो है, कृष्ण की भक्ति जो है वो प्रकाश के समान है। तो संसार में ला सकते हो, प्रकाश कहीं प्रकाशित होता है, लाइट को कहीं प्रकाशित कर सकते हो। टॉर्च लाइट इस रूम में करो, उस रूम में करो, तो जितना दिन भक्ति करोगे प्रकाशित रहेगा। यदि बुझ भी गया तो दूसरे रूम में चालू कर सकते हो।
ये ठीक है, चले भक्त का मन में दुख आते क्यों, सुख क्यों नहीं आते?
क्योंकि वो भक्त अभी नहीं है, प्रयास कर रहा है भक्त बनने का। भगवान टेस्ट करते हैं, हरिदास तुमको टेस्ट करते हैं, तुम्हें गुस्सा कितना आ रहा है, झगड़ा कितना करते हो, भक्ति में कितना मन लग रहा है। भगवान तो टेस्ट करते हैं, मुफ्त में थोड़ी भक्ति दे देंगे भगवान। हाँ, और कोई प्रश्न इधर? ऑल राइट, ग्रंथराशियम भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।